था कि कुरान पाक में है एक जगह है कि पहाड़ों मेहू की तरह गाड़ दिया गया है, और एक जगह है कि आप समझते हैं कि ये जमे हुए हैं लेकिन वो उड़ रहे हैं। इनका मुझे जरा समझा दीजिए।
माशाल्लाह जी, देखें ये बहुत ही गहरे तफक्कुर के बाद ऐसा सवाल अल्लाह जहन में डालता है। एक जगह अल्लाह कहता है कि मैंने इन्हें मेखों की तरह गाड़ दिया है, दूसरी जगह अल्लाह फरमा रहा है कि ये बादलों की तरह उड़ रहे हैं, सहाब का लफ्ज आया वहां, हाँ या नहीं? अब इसमें फर्क देखें, हजूर मुर्शिदे करीम ने एक जगह लिखा है शायद आज की बात में कि ये पानी के मशकीजे हैं। पहाड़ क्या हैं? पानी के मशकीजे। ये लफ्ज जरा गौर करें इस पे। अब आप तवज्जो दें, जरा तवज्जो से इस पे सोच के देखें कि पहाड़ों में पानी के चश्मे क्यों उबलते हैं? जब सतह मतलब है वाटर लेवल जो है वो 8,000 मीटर नीचे है, 6,000 मीटर नीचे है, कहते हैं ना 6,000 फुट की बुलंदी पे और 8,000 फुट मीटर कह गया, मैं माफी चाहता हूँ। अब असल में क्या है कि ये पानी ही के मशकीजे, बड़ी मोटी खाल वाले जो हमारे लिए, यानी उसके अंदर पानी भरा हुआ है। अब ये तो हो गया, इसके बादल क्या होते हैं? पानी कैरी कर रहे हैं ना, बादलों में क्या होता है? पानी होता है, गैसेस फॉर्म में होता है। गौर करें, अब इसको समझें कि ये गाड़े हुए मेखों की तरह का क्या मतलब है। आपने अगर आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ये देखा हो कि गाड़ी अगर वॉबल करे, गाड़ी चलते हुए हिल रही हो, तो कहते हैं इसकी व्हील बैलेंसिंग होने वाली है। सुना है आपने ये लफ्ज?
जी।
व्हील बैलेंसिंग में क्या करते हैं कि एक तराजू नुमा मशीन पे उसे रखते हैं व्हील को, और उसे घुमा के देखते हैं कि इसका वेट किस तरफ ज्यादा है। उसके ऑपोजिट वहां सिक्का गाड़ दिया जाता है रिम पे,
अच्छा
उससे व्हील बैलेंस हो जाता है, इसको व्हील बैलेंसिंग कहते हैं। ये बिल्कुल मैकेनिकल प्रोसीजर बता, मतलब मिसाल अर्ज करके मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जमीन अपने एक्सेस पे 25,000 मील फी घंटा की रफ्तार से रोटेट कर रही है। अब इतनी स्पीड से क्या होगा, अगर इसमें जरा सी भी वेट की कहीं गड़बड़ हो जाए तो क्या होगा, ये वॉबल करेगी, और अगर वॉबल करेगी तो अपने कोर्स से हट सकती है। लिहाजा कुदरत का कैलकुलेशन देखें कि जैसे एक न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसी तरह जमीन अपने एक्सेस पे घूम रही है और वॉबल नहीं कर रही, अपने मदार में भी घूम रही है और अपने एक्सेस पे भी घूम रही है। अब उसको कंट्रोल करने के लिए कुदरत खुद अपना राज बता रही है, अल्लाह रब्बे करीम अपना राज खुद बता रहे हैं। एक जगह कहा कि ये गड़े हुए हैं। अब अगर आप पहाड़ों का जमीन पे नक्शा देखें, जोग्राफिया का कोई नक्शा लेके, तो आपको चेन ऑफ पहाड़ नजर आएगी, चेन ऑफ माउंटेन्स, मतलब जैसे सिलसिला कोह हिमालय, सिलसिला कराकुरम। ये हम लफ्ज सिलसिला क्यों बोलते हैं? इसलिए कि ये एक चेन की तरह जकड़े हुए हैं। अब उधर समुद्रों का पानी, उधर पहाड़ों में पानी, एक खारा और नमकीन और दूसरा मीठा और शीरी। इस वजाहत के बाद उम्मीद है कि ये दोनों आयात आपकी समझ में आ गई होंगी कि अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद फरमा रहे हैं कि ये सारा निजाम पानी पे बेस्ड है। एक जगह तो अल्लाह ने कहा भी है कि भाई हमने आसमान से पानी उतारा और उसमें तुम्हारे लिए हयात है, दूसरी जगह कहा कि उसका तख्त जो है वो पानी पर कायम है, यानी सब कुछ पानी से बना है। अब पानी को मैं और आप मटेरियली जब देखते हैं तो ये है, हजूर कलंदर बाबा और ये ने इसकी शरह में फरमाया कि पानी जो है ये तसव्वुरात का खौल है, अब जब हम इसको इस जुमले की रोशनी में देखेंगे कि पानी जो है ये तसव्वुरात का खौल है, का क्या मतलब? पानी आप देखें, जिस चीज में डालेंगे वो वैसा ही उसी जैसा हो जाएगा। गिलास में डालेंगे वो गिलास की शक्ल का हो जाएगा, जग में डालेंगे वो जग जैसा हो जाएगा, उसे आप किसी सुराही में डालें वो सुराही की शक्ल इख्तियार कर लेगा, प्याली में डालें तो वो प्याली की शक्ल इख्तियार कर लेगा, जाम में डालें तो जाम जैसी। हाँ या नहीं? इसी तरह पानी जब बीज में दाखिल होता है तो वो बीज के तसव्वुरात को अपनाकर वो पौधा बन जाता है। पत्थर में दाखिल होता है तो पत्थर बन जाता है। ये हीरा सब पानी के मुख्तलिफ मज़ाहिरात हैं। ये लौह कलम को जब आप तवज्जो से पढ़ते हैं, पढ़ेंगे तो फिर आपको ये सारे राजवान नजर आएंगे।
बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।
आपका शुक्रिया कि आपने इतना कीमती सवाल पूछा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इससे अंदाजा होता है ना कि किसी ने तफक्कुर किया, कम से कम इस्तेमाल तो किया ना, गौर तो किया। अब मैंने टूटे फूटे अल्फाज में आपको तौजीह अर्ज कर दी। अब
सर आपने बहुत अच्छी तरह बताया,
अल्लाह आपको खुश रखे जी। जी
हेलो
जी,
मैंने आपसे पूछना था कि आपने कहा था कि मैंने मुराकबे पे जब गौर किया कि मुराकबे का लफ्ज कुरान शरीफ में कहाँ है, तो फक्को रकाबा, फक्को रकाबा के बारे में मैं चाह रही थी आप उसके बारे में थोड़े से डिटेल में कुछ बयान करते।
अब मुझे ये सूरत का नाम तो याद नहीं आ रहा, ये तीसरे पारे में है जी,
तीसरे पारे में, तीसरे पारे में बताया था,
तीसवें, तीसवें, तीसरे नहीं, तीसवें, थर्टियथ,
ओके,
आखिरी पारे में।
जी जी मैंने जी आप उसके बारे में
जी मैं अर्ज कर रहा हूँ कि फक्को रकबा, रकब कहते हैं गर्दन को, ठीक है, रकब कहते हैं, इसी से लफ्ज है रकीब
जी।
अब रकीब का मतलब है, मैं गलत बोल गया हूँ, माफी चाहता हूँ, रकब का मतलब है निगरानी करना, इसी से लफ्ज है रकीब, निगरानी करने वाला।
अच्छा,
अब अल्लाह क्या कह रहे हैं कि तुम अपने जहन की निगरानी करो। हमने क्या कर दिया? अच्छा। फक्को रकबा के गर्दन आजाद करो, हमने रकब का मतलब गर्दन लिया है और फक्को यानी फे काफ कश वाला वो जो है उसका मतलब आजादी कर दिया। और इसका तर्जमा वहां पे ये लिखा हुआ मिलता है हमें कि गुलाम आजाद करना। अब आजकल के दौर में तो गुलाम है नहीं, अब मैं क्या आजाद करूं? इसलिए कुरान जो है वो हमें दावत देता है, हुक्म देता है कि हम उस पे अल्फाज की जड़ को पकड़ के उस पे गौर करें। अब जब रकब का मतलब निगरान हुआ, निगरानी हुआ, तो रकीब का मतलब निगरानी करने वाला हुआ, तो मुराकबा क्या हुआ? निगरानी का अमल, निगरानी के अमल को मुराकबा कहेंगे। अब आप गौर करें कि जब हम अपने जहन की निगरानी करेंगे तो मुराकबे में क्या करते हैं? आप एक नुक्ते पे तवज्जो जमा के बैठ जाते हैं और जो जहन में ख्याल आना आने हैं या आ रहे हैं उन्हें आने देते हैं और गुजरने देते हैं। मतलब है यू आर सिटिंग जस्ट लाइक ए ओपी, ऑब्जर्वेटरी पोस्ट पे बैठा हुआ बंदा होता है ना चौकीदार, वो क्या करता है? रिलैक्स होके बस बैठा होता है, देख रहा होता है कि दुश्मन की टेरिटरी में वहां पे कोई जानवर चल रहे हैं, तो कोई फौज मूव कर रही है, तो कोई लोग जा रहे हैं, तो मतलब वो क्या कर रहा है? दूरबीन होती है उसके पास, एक वायरलेस होता है। तो ऑब्जर्वेटरी पोस्ट का काम करना है हमने। जब मुराकबे की हालत में बैठते हैं तो हम अपने जहन को आजाद छोड़ देते हैं और उसकी निगरानी करते हैं कि ये कहाँ जा रहा है। वो फिर जब उसकी फ्लाइट बनती है, अब अगर उसकी फ्लाइट दुनिया के कामों की तरफ है तो आप दुनिया में फंसे रहेंगे, अगर अल्लाह की तरफ हो गई तो फिर अल्लाह से रब्ता हो जाएगा और अल्लाह अपने इत्तलात और ख्यालात जो हैं वो आप तक मुंतकिल करता रहेगा, क्योंकि आप उसकी तरफ मतवज्जो हो गए।
अच्छा,
वाज़े हो गया ये पूरा प्रोसीजर जो है?
जी बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह वाजे हो गया।
अल्लाह का शुक्र है। देखिए एक बात सुन रखे, आज मैं एक बात कहने लगा हूँ, जरा बुरा ना मनाइएगा क्योंकि झटका लग सकता है। देखे ना, अब हजूर अलैहिस्सलाम पे क्या आया? वही आई,
वही।
तो कुरान क्या हुआ?
वही।
शाबाश। तो हम क्या पढ़ रहे हैं?
वही को पढ़ रहे हैं।
हम वही को पढ़ रहे हैं और समझ नहीं रहे, तो बताइए हम इसकी मतलब कि क्या हम इसका वो अदब कर रहे हैं, हम इसका एहतराम कर रहे हैं?
जी बिल्कुल नहीं।
आप गौर करें, हम अल्लाह रब्बे करीम ने हजूर सलाम के जरिए क्या इंतजाम फरमाया है कि वो वही जो हजूर सलाम के कल्बे अथर पे या उनके सामने लाई गई और जिब्राइल उनके पास लेकर आए, वो उन्होंने अपनी उम्मत के हर बंदे के लिए अवेलेबल कर दिए।
जी हाँ।
और करें,
जी बिल्कुल,
बहुत बड़ी बात है जी। अगर इसीलिए हम देखे ना, आपके सिलसिले में, सिलसिला अजीमिया में जाप्ता नंबर 9 क्या कहता है कि कुरान पढ़ो, कुरान समझो। अब हम सिर्फ तिलावत ही करके थक के बैठ जाते हैं। वो समझने तक नौबत ही नहीं जाने देते।
शुक्रिया आपका बहुत।
आपका शुक्रिया जी। जी जी वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। जी जी कुरान है ही वही, तो उसको कौन सी वही की रोशनी में समझेंगे? कुरान को आपने देखें, समझने की काविश करनी है ईमानदारी से, समझाना अल्लाह ने, ये उसका कलाम है, वो जानता है वो क्या कह रहा है। हम और आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि तवज्जो को अल्फाज के मफहूम पे मरकूज रखने की कोशिश करें। उसके लिए आप डिक्शनरियों का इस्तेमाल करें, ठीक है, तराजम के बजाय बराह रास्त डिक्शनरी को कंसल्ट करें और फिर ये देखें कि मुख्तलिफ डिक्शनरियों में मुख्तलिफ मतालब दिए गए हैं, तो बेहतर होगा कि वो मतलब है जितना आप ये रिसर्चफुल माइंड होना चाहिए ना, अल्लाह क्या कह रहा है कि भाई मेरी बातों को। अब या तो हमें अरबी आती होती। मैं आपको एक बड़ी मजे की बात अर्ज कर देता हूँ। एक दफा एक साहब आए और कहने लगे आपको अरबी आती है? मैंने माजरत की, नहीं मुझे अरबी बिल्कुल नहीं आती। उन्होंने बड़े तन से कहा कि आप कुरान की तशरीह करने की मतलब बड़ी तशरीहें करते हैं, बड़े नेस्टी टोन में। मैंने कहा हाँ वो और बात है। मैंने कहा वो और बात है। उन्होंने कहा वो और बात क्या है? मैंने कहा मैं जबानदान नहीं हूँ, मैं सुखन फहम। कहने लगे इसका क्या मतलब है? मैंने कहा मैंने उर्दू में ये बात कही है ना, दो लफ्ज़ बोले कि ज़बानदानी क्या चीज़ है और सुखन फहम होना क्या है। मैंने उनको एक मिसाल अर्ज की, मैंने कहा बच्चा जो है माँ की बात समझता है, जब दुनिया में आया तो कोई ज़बान नहीं जानता था, तो माँ बोली उसने कितने अरसे में सीखी? उन्होंने कहा जी 2-4 साल में जाके वो बोल। मैंने कहा 5 लगा ले, मेरे जैसे गबी बच्चे भी होते हैं ना, बड़े स्लो सीखते हैं वो, तो फर्ज करें उसने 5 साल में बोलना सीखा। माँ की बात, माँ तो उसकी बात पहले दिन से समझ रही है जबकि वो कोई भी नहीं बोलता था। उसे पता था इसके पेट में दर्द है तो इसको भूख लगी है और इसको कोई चीज ने काट लिया या इसको कोई और मसला है, हाँ या नहीं। असल बात यह कि हमने कभी जहन लगाया नहीं कुरान में, हमें सुखन क्या समझ आ जाएगा। अब देखे ना, बड़ी सिंपल सी बात है, हम शेर व शायरी पढ़ते हैं, कितना जौक व शौक से लोग वाह वाह कर रहे होते हैं, उनको कुछ समझ आ रहा होता है ना। अब मेरे जैसे गबी बंदे को वो कहता है ये क्या बोल रहा है यार, ये शेर में क्या है, मुझे तो नहीं कुछ समझ आई। वो दूसरा उसको बड़ी उस नजर से देखता है कि अरे तुझे काश के तूने पी होती। कहने का मतलब ये कि जब तक हम जबानदानी की जान छोड़कर सुखन फहमी की तरफ मतवज्जो नहीं होंगे, ये वाजे हो गई बात आपको कि वही है कुरान, तो वही ही है। वही को हमने नहीं समझना, वो अल्लाह ने खुद समझाना है। अल्लाह ने साफ मना किया कि अपनी जबान को हरकत मत दो, इसको याद कराना हमारा जिम्मा है। क्या मतलब कि जब वही आ रही है सिर्फ उसको तवज्जो से सुने। अब हमने कभी कुरान को इस जज्बे से पढ़ा कि ये मेरे लिए है? कभी हमने इसको ये इस फीलिंग के साथ अटेंड किया कि ये अल्लाह का कलाम मेरे लिए है, अल्लाह ने कैसा इंतजाम किया? देखे ना, हमें कहा गया कि भाई आज से 1400 साल पहले हजूर अलैहिस्सलाम पे नाजल हुआ। अब इस जुमले को बदल दें कि ये किताब अल्लाह रब्बे करीम ने अपने महबूब तरीन बंदे के जरिए मुझ तक पहुंचाई है। क्या इंतजाम किया? आपके जहन में अपनी भी अहमियत उजागर हुई या नहीं हुई? और साथ में कुरान की अजमत भी उजागर हुई कि अल्लाह ने कैसा इंतजाम किया भाई। अब अल्लाह रब्बे करीम ने अपने बंदों में से एक बंदे को चुना, मुस्तफा का लफ्जी मतलब है चुना हुआ। अब ये हजूर अलैहिस्सलाम का इसमें नामे नामी है, इसमें मुबारक है मुस्तफा चुना हुआ। अल्लाह ने उन्हें चुना और उनको वही उन पे नाजिल की, उन्होंने वही को रिकॉर्ड करके अपनी उम्मत के लिए दस्तयाब कर दिया। क्या कमाल किया उन्होंने, ये है असल मौजज़ा। हमें शऊर ही नहीं है, हम सिर्फ इसको गिलाफों में लपेट के वो रहल पे रख के हिल हिल के पढ़ लिया और समझ लिया कि जी बस हमने हक अदा कर दिया। ऐसे थोड़े ही होता है। तो सुखन फहमी की तरफ मतवज्जो हो जाएंगे तो अल्लाह बहुत जहन खोलेगा। जी और कोई? जी जनाब,
सर एक और सवाल।
जी जी इरशाद।
अलकारियात
जी,
इसमें यही है कि खड़खड़ाने वाली
जी,
माल कारियात, आप क्या समझते हो कि खड़खड़ाने वाली क्या है? ये जो इसका जरा थोड़ा सा इस आए आप सूरत का थोड़ा सा मफहूम समझा दीजिए।
इस सूरत का मफहूम पहले अल्लाह रब करीम, ये जरा मैं निकाल न लूँ इसको, जरा फिर आप इजाजत दें एक मिनट। ये सूरत का नंबर बता सकते हैं आप मुझे? ये देखिए जरा इसकी टोन जरा मुलायजा करें। अल कारिया, ये खड़ 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 खड़, अल कारिया खड़ 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 खड़, ठीक है
जी।
इसमें कोई और चीज है? अल कारिया, कारिया, फिर दोबारा कहा मल कारिया, सवाल पूछा क्या है ये खड़ खड़,
वह मादरा का मल कार्य, ऐसे ही है ना
जी।
अब देखिए एक ही लफ्ज को अल्लाह रब्बे करीम तीन दफा इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या हो रहा है, पहले मैं एक ऐलान किया जा रहा है, खड़ 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 खड़। क्या है ये खड़ 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 खड़, और क्या समझे कि क्या है ये खड़ खड़, जरा देखें टोन देखें। अब ये टोन महसूस हुई आपको, आगे बताया कि ये एक ऐसी हालत है, यौमा हालत, यकून नास लोग हो जाएंगे, कल फराशिल मबसूस क्या होगा, बिखरे हुए पतंगे। अब बिखरे हुए पतंगे क्या होता है, यानी खड़खड़ाहट की वजह से ऐसी हालत हो जाएगी कि दे विल लूज दी सेंस ऑफ डायरेक्शन, उन्हें पता ही नहीं किधर जाना है, पतंगे क्या कर रहे हैं बिखरे हुए हैं, हैपहैज़र्ड ज़िगज़ैग हवा में उड़ रहे हैं, गौर करें हाँ या नहीं। यौमा यकून नास, यकून लोग हो जाएंगे, लफ्ज है हो जाएंगे, क्योंकि अगली आयत में आ रहा है वह तिकून उल जिबाल, और पहाड़ों को कर दिया जाएगा, एक है हो जाएंगे और एक है कर दिए जाएंगे। अब गौर करें, होना जो है वो अंदर से है और किया जाना बाहर से है, तो ये आवाज की लहरों का पूरा निजाम अल्लाह रब्बे करीम इरशाद फरमा रहे हैं, क्या कि ये एक ऐसी हालत होगी कि आवाज की फ्रीक्वेंसी की वजह से तुम सेंस ऑफ डायरेक्शन लूज कर बैठोगे और तुम्हारे अंदर जो जिबिलत है उसको क्या कहते हैं, धुनकी हुई रंगीन ऊन की तरह उड़ा के रख दिया जाएगा। अब आगे बता रहे हैं कि क्या आगे क्या होगा, कि इससे बचना कैसे है, फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनहु, हमने क्या तर्जमा कर दिया, जिसका अमाल भारी होंगे, पता नहीं अमाल किस चीज का तर्जमा है इसमें है, फअम्मा पास जो होगा मन सकुलत वजनी, मवाजीना हो मवाजना करने पे दूसरों के साथ, एज कंपेयर टू दिस फ्रीक्वेंसी, जो इस फ्रीक्वेंसी को फेस करने के उसमें बड़ा भारी भरकम होगा, उसमें सकल होगा, उसमें तवानाई होगी। अब फर्क नजर आ गया तर्जमे का, क्या कहा, हो वफी ऐशा तिर राजिया, वो होगा अपनी मर्जी के ऐश में, वह अम्मा मन खफत मवाजीनो, और वो जो हल्का पड़ेगा इस फ्रीक्वेंसी के मुकाबले में वो हल्का होगा, क्या होगा, फउम्मुहु हाविया, क्या हुआ, वो होगा हाविया में, ठीक है। अब हाविया, हाविया का मतलब जहां रहा जाता है, वो होगा अपनी रहने की जगह पे, और फिर पूछा वह मादरा का माहिया है, वो तुम्हें क्या पता क्या है, वो नारुन हामिया, वो आग है जो उसकी हमायती है, या जिस आग की ये सारी जिंदगी हमायत करता रहा, साफ लिखा हुआ हामिया। हम क्या करते हैं, परेशान रहते हैं तो हम आपकी हमायती तो कर रहे हैं, हम डरे हुए हैं तो क्या कर रहे हैं। अब यही खौफ, यही डर, यही परेशानी, यही घुटन जो हमारे अंदर दुनिया में है, जब हमारे साथ ऊपर जाएगा तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी आग साथ ही तो लेके जा रहे हैं। नारुन हामिया, वो जो तुम्हारी हमायत, जिसकी तुम हमायत करते थे, अपने तर्जमा क्या कर दिया, फायर ब्लेजिंग फियर्सली, सदक अल्लाहुल अजीम। जी वालेकुम अस्सलाम जी।
تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق ہر جی روح دنیا میں آتا ہے, اس لیے کہ یہاں سے واپس لاتا ہے. ہر جی روح کے قیام کی ایک مدت کا تعین کر کے اس کو دنیا میں بھیجا جاتا ہے تاکہ اس دنیا میں اپنے قیام کی مدت اچھا مکمل کر کے چلا جائے, اس دنیا میں منتقل ہو جائے جہاں اس کو رب کی طرف سے جانے کے باقی مراحل طے کر رہے ہوتے ہیں. اب اس دنیا میں کیوں بھیجا جاتا ہے, اس کے دل میں وہ کیا کام لگا دیا جاتا ہے جو اس نے کرنا ہوتا ہے, یہاں پر بھیجنے میں اللہ کی کیا حکمت ہے, غرض و غایت کیا ہے, جب بھیج دیا تو یہاں رہنے کیوں نہیں دیا جاتا ہے؟
جی جی
ٹھیک ہے
جی جی آگے. یہ تو آپ مطلب ہے میں ان سوالوں کے جواب عرض کروں؟ یہ میرا خیال ہے آپ نے کتاب قرآن حکیم اور لاشعور سے پڑھا ہے. جی ماشاء اللہ. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب کریم نے انسان کے اندر اپنی روح پھونکی, نفخت فیہ من الروح, باقی ساری کائنات اس نے کن کہہ کے بنائی, اور انسان کو اس کن کے مرحلے سے اٹھا کر تو اس میں علیحدہ سے اپنی روح بھی پھونک دی. یہاں پہ آپ کو فرق نظر آ گیا. اب ایک آیت ہے جو کہتی ہے, اللہ رب کریم ارشاد فرما رہے ہیں ایک آیت میں کہ انی جائلو فی الارض خلیفہ, میں نے تو اس کو زمین میں, فی 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 حلل ارض نہیں ہے, یہ زمین میں خلیفہ بنایا. خلیفہ کون ہوتا ہے؟ ڈپٹی وائس, جیسے وائس پرنسپل ہوتا ہے, وائس چانسلر ہوتا ہے, وائس یعنی سیکنڈ. اللہ نے اپنا سیکنڈ بنایا, سیکنڈ ان کمانڈ. اب یہ ہماری تخلیق کا مقصد تھا, پھر اس کو دوسری جگہ فرمایا. کیا فرمایا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا سوائے اس کے کہ وہ میرا کام کرے. اب ہم نے لفظ عبادت کر کے ساروں کو اٹھک بیٹھک میں لگایا ہوا, اللہ کا کام کرنا کسی کو دھیان ہی نہیں آ رہا کہ اللہ چاہتا کیا ہم سے. دیکھیں نا, عبد کا مطلب ہے بات ماننے والا, خادم, غلام. تو ہمارے ہمیں اپنی حیثیت کا ہی نہیں پتا, ہم یہاں پہ اپنے باپ بن کے بیٹھے ہوئے, اللہ کے غلام تھوڑے بنے ہم. اب یہ دو باتیں ہو گئیں, کیا کہ انی جائلو فی الارض خلیفہ, اللہ نے کہا انسان کو تو میں نے اب کہا کہ نہیں, وہاں آدم اور انسان کا فرق دیکھیں. آدم کو علم الاسماء سکھایا, انسان وہ ہے جو اپنی اصل کو بھولا ہوا ہے, نسیاں سے ہے یہ لفظ, نسیاں, بھولا ہوا, نسی اخل کا. سورہ رحمان میں اللہ رب کریم کہہ رہا نا کہ اپنی تخلیق بھولا ہوا ہے. وہ ہوا خصیم مبین, اور یہ کھلا ہوا جھگڑالو بنا ہوا ہے. خصم کہتے ہیں نا جھگڑنے والے کو, اسی سے ہمارے یہاں خسما کھانی کہتے ہیں نا, خسما نوکھا محاورے میں. اب آپ غور کریں کہ اللہ رب کریم نے آپ کو تخلیق کیا تھا اپنی نیابت کے لیے, آپ کو علم اسماء سکھانے سے پہلے اپنی روح میں سے کچھ پھونکا آپ کے اندر, نفخت فیہ من الروح, روح میں سے کچھ پھونکا, روح نہیں پھونکی. اگر اللہ اپنی روح پھونک دیتا تو ہم کیا ہوتے؟ ہم اللہ ہو جاتے, لیکن ہم تو مخلوق ہیں. تو اللہ نے اپنی روح میں سے کچھ صلاحیتیں پھونکی, وہ صلاحیتیں جو ہمیں اس کی سمجھ, ہمیں اس کو سمجھنے کے قابل بنا دیں. اب اس کے بعد آپ کو کہا کہ ذرا اپنے وہ جو میں نے تمہیں علم عطا کیا اس کا اظہار کر کے بتاؤ, اظہار کرو, سامنے بتاؤ. ٹھیک ہے, حضرت آدم نے یہ تھوڑا ہی ہے کہ وہ قاعدہ سنا دیا کہ الف الف اللہ تو بے بلی تو تے تتلی، یہ تھوڑا ہی ہوا. وہ جو علم عطا کیا تھا اس کو برت کے دکھایا ہوگا نا. اب وہ علم تو فرشتوں کو تھا ہی نہیں، تو انہیں کہا کہ بھئی سجدہ کرو. اب یہ تھا کہ وہاں جب انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، تو اس کو کہا آدم کو کہ تم اپنی زوج کے ہمراہ جنت میں رہو. اب جب وہ جنت میں رکھا گیا تو منع کیا، دیکھو شیطان جو ہے نا تمہارا، تمہارے اندر پوزیٹیو نیگیٹو دونوں فیکٹر کام کر رہے ہیں، نیگیٹیوٹی سے بچ کے رہنا. ورنہ غور کریں ابلیس کو تو اللہ نے مردود کر دیا تھا، وہ جنت میں کہاں سے گھس گیا. وہ اصل میں ہمارے اندر کی نیگیٹیوٹی کو اللہ رب کریم شیطان فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. کون؟ تمہارے اندر کی اپنی نیگیٹیوٹی. دیکھیں نا، اگر میں مان لوں کہ بھئی میرے اندر کوئی چیز خراب ہے، مجھے اس سے بچنا ہے. اب ہم نے چونکہ باہر اس کو ابلیس کی ذریت قرار دے دیا، لہٰذا یہاں سارے غلط ہوئے ہیں، کوئی اپنی اصلاح پہ آمادہ ہی نہیں ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا کیونکہ وہاں آپ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے. کیا ہوا تھا؟ ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کر شجر ممنوعہ کے پاس جانے کی غلطی کر بیٹھے، جس چیز سے اللہ نے منع کیا تھا. ہم نے اللہ کی حکم عدولی کی، نافرمانی کی. زیادہ صحیح لفظ یہ کہ بغاوت کی. اس پہ جنت نے ریجیکٹ کر دیا. اب اللہ کی چونکہ آپ انتہائی پیاری مخلوق ہیں، بہت ہی محبوب مخلوق ہیں، کیا کہا؟ بیچ میں زمین لے آئے. آپ جنت سے نکلے تھے تو کہاں جا رہے تھے؟ آپ جہنم میں جا رہے تھے. اللہ نے بیچ میں زمین رکھ دی. اور کیا کہا؟ مستقر، قرار پکڑ، مستقر فی الارض، ہاں یا نہیں؟ وہ متان الہین، اور یہ کچھ مدت کے لیے، اور میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی، تو نے اگر فالو کیا تو تم واپس آ جانا. غور کریں، میری طرف سے ہدایت آئے گی. اللہ خود ہدایت دیتا ہے. کیا ہدایت دیتا ہے؟ کہ وہ غلطی نہیں کرنی، یعنی شیطان کو ڈیفیٹ کرنا سیکھنا ہے تم نے دنیا میں، تمہیں اس لیے بھیج رہا ہوں میں. تمہیں یہاں پہ قرار پکڑنا ہے، دنیا میں رہ کے تم نے شیطان کو ڈیفیٹ کرنا سیکھنا ہے. اگر تم نے ڈیفیٹ کر لیا، ثابت کر دیا کہ تم باغی نہیں تھے، تم سے غلطی ہوئی، تم چکمے میں آ گئے، اس نے تمہیں بے وقوف بنا دیا، اب تم نے اتنے وائز ہو کے دکھانا ہے کہ دوبارہ شیطان تمہیں بہکا نہ سکے. کتنوں کو یہ شعور ہے؟ بھائی ہم صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ وہ شیطان بھاگ جائے گا. او بھائی میرے اندر جو میرا نیگیٹو اینڈ ہے، دیکھنا بجلی کی تار میں دو تارے ہوتی ہیں نا، بلب میں دو تارے ہوتی ہیں، پنکھے میں دو تارے ہوتی ہیں، ہر برقی آلے میں دو تارے ہوتی ہیں، ایک پازیٹو ایک نیگیٹو، ہاں یا نہیں؟ پورا تخلیقی نظام اللہ بتا رہا ہے، خلقناکم زوجین، تم کو میں نے بنائی جوڑوں میں. تو میرے اندر پازیٹو ہے تو ظاہر ہے اس کا نیگیٹو بھی تو ہے نا. اب مجھے اپنا نیگیٹو کنٹرول کرنے کے لیے بھیجا کہ جا کے وہاں پہ دنیا میں جا کے بھگت، مادی جسم کی قید میں رہ اور یہ اپنی نیگیٹیوٹی کا پتا مار. اگر تو نے پتا مار لیا واپس آ جانا، ورنہ جہاں جا رہا ہے وہیں جا. یہ ہے دنیا میں بھیجے جانے کا اصل مقصد. اس لیے کہ یہاں آ کے بھی دیکھے نا، شیطان تو لگا ہوا ہے نا، وہ تو اپنا کام کر رہا ہے، وہ تو ہمیں بہکار ہے، ہمیں اللہ سے دور رکھے ہوئے. ہم دور ہوئے ہوئے کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں نیت کا اختیار دیا ہوا ہے. اب آپ نے طے کر لیا کہ نہیں بھی میں نے اپنے انر کے شیطان کو ہرانا ہے. دیکھے نا ایک حدیث بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات فرمائی کہ بھئی ہر بندے کے ساتھ اس کا شیطان لگا ہوا ہے، اس کو مطلب ہے ہرانا ہے، सहाबा कराम में से किसी ने उनसे दरियाफ्त किया क्या आपके साथ भी लगा हुआ है, उन्होंने कहा जी हाँ मैंने उसको मुसलमान किया हुआ है। यानी उसकी मैंने ऐसी बेखकनी की है कि वो भी मुसलमान हुआ हुआ है, ये हदीस है। अब क्या हम उस नबी की उम्मत होकर आज तक, ये देखें आपने सवाल पूछा मैं जोश से भर गया, क्योंकि ये बुनियादी बात है, हमें क्लियर नहीं है कि हम दुनिया में क्यों आए हैं। हम बस जानवरों की तरह चर लिया, भिड़ लिया, लड़ लिया, खा लिया, पी लिया, बच्चे पैदा कर लिए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, वो आगे हमारे बच्चे भी हमारी तरह जाहिल के जाहिल,
जाहिल के जाहिल बिल्कुल।
नतीजा
आगे से जो उस्ताद हैं ये मौलवी वगैरह हैं, आलमे दीन लोग हैं, वो भी बहुत, वो भी
बस हमें उन पे बात नहीं करनी। सुनिए मेरी अर्ज सुने, देखें हमें अपनी बात को खुद समझना है, ठीक है। जब आपने किसी को ठेकेदार बना दिया कि जी तू मुझे बात समझा, अब उसका जो मर्जी दिल करे समझाए। देखे ना, जब मैंने उनको कहा कि मौलवी या मौलाना, क्या कह रहा हूँ, मेरा मौला, हमारे मौला हैं, मौला तो मैं खुद बना रहा हूँ उनको, और फिर बातें भी उनके खिलाफ कर रहा हूँ हैं। नहीं भाई, वो तो देखें वो अपना दर्जा है ना उनका, वो हमें कुरान पढ़ा तो रहे हैं ना भाई, हमें कुरान नाजरा किसने पढ़ाया? ओहो भाई, जितनी उनको आते हैं, देखे उन्होंने पढ़ना सीखा, उन्होंने आपको पढ़ना सिखा दिया, ठीक हो गया। आगे के मराहिल आपने तय करने, अपनी कब्र में आपने जाना है या मौलवी साहब की कब्र में जाना है?
नहीं जाना तो अपनी कब्र में,
बस एनी जिनी गल सी, समझ आ गई है। हमें देखें अपनी बात को, अल्लाह की बात को खुद समझना। मैंने क्या अर्थ किया, समझना हमने है, समझाना अल्लाह ने। वो नजरे करम कर दे, आपका खलूस देखकर आप पे रहमत अपनी कर दे, और वो करता है। वो तो खुद कहता है मैं हदायत दूंगा, तुम आओ तो सही। क्या कहा, मेरी तरफ कोशिश तो करो, वह जाहेदू फी ना, साफ कह रहा है मेरे, मेरी तरफ कोशिश करो, जाहेदू जाहेदू, कोशिश तुमने करनी, सो बोलो ना और करें। ठीक हो गया जी, आपको ये जवाब क्लियर हो गया कि दुनिया में क्यों भेजा? कोई ज्यादा ही अल्लाह का शुक्र है,
अल्लाह ताला बस उसमें कामयाब भी करते।
बस आप नियत करके तो जुट जाइए, जाहेदू हो जाइए। हम जहाद दूसरा मतलब लेते हैं कि जी तीरों तफंग से होगा, नहीं भाई, अपने अंदर के शैतान को हराना है, ये असल जहाद है,
सबसे बड़ा जहाद ये है। यहाँ
इसी को कहा ना कि नफ्स के खिलाफ जहाद जो है जहाद अकबर। जी और किसी के ज़हन में कोई सवाल है? जी जनाब,
क्वेश्चन और पर
जरूर। जी जी,
आप जिक्र उस्ताद को सामने रखते हुए ये तय करना दुश्वार नहीं कि इंसान को दुनिया में इसलिए तो नहीं हरगिज भेजा गया कि यहाँ का होकर रह जाए?
जी जी,
उसको वापस अपने वतन जन्नत तरफ जाना है,
बिल्कुल ठीक,
और वहाँ जाकर उसको अल्लाह की नियाबत के प्राइस पर अंजाम देने हैं। लेकिन इसके लिए अल्लाह की तरफ से दीवी हिदायत के मुताबिक जिंदगी बसर करने की जो शर्त है इसको कोई जाने ही ना, और अगर जान ले तो अमल
अल्लाह की, अल्लाह की, रुके जरा जरा रुके, अल्लाह की हदायत के मुताबिक जिंदगी बसर करने की शर्त ही ना कोई समझे, अल्लाह की, अल्लाह की। देखें हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते।
अगर जान ले उस पर अमल ना करे, अगर अमल करे तो बेदिली बेरगबती जो इतना ही करे जितना उसको आसान लगे, तो वो फिर क्या है, वो जन्नत की बजाय तो कहीं और ही फिर जाएगा।
जाहिर बिल्कुल,
नमाज छूट जाती है, कोई दुनिया का काम होता है तो नमाज छूट जाती है।
अर्ज ये है, देखें सीधी सी बात है, हमें अल्लाह की बात को समझना है, पहले हम समझेंगे उसके बाद अमल ठीक होंगे, हाँ या नहीं। बगैर सोचे समझे अगर मैं अमल कर रहा हूँ तो वो मैकेनिकल अमल है, वो रोबोटिक है।
सही।
उसको मैं
रोबोटिक है, सही।
क्या कहूंगा,
उसको खत्म करेंगे, उसको झूठ,
रिचुअल, ये रस्म बन गई, हम एक काम रस्मन कर रहे हैं, रस्में नहीं करनी, उसकी रूह के मुताबिक करना है उसको, ठीक हो गया जी। देखे ना, अल्लाह रब्बे करीम आपसे फरमा रहे हैं कि अकीमो सलात व आतो जकात, आपने और हमने क्या तर्जमा किया हुआ है, कि नमाज पढ़ो। अब लफ्ज नमाज कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया, अकीमो सला, अकीम कीम कीम, कायम करना है, किसको, सलात को, सलात क्या है, ताल्लक,
सलात को
एक ताल्लक अल्लाह कह रहा है मेरे साथ कायम करो, वातो जकात यानी खुद को ग्रो करो, खुद को डेवलप करो, हमने तर्जमा कर दिया कि 2.5% दो। वो कुरान जो कह रहा है कि भाई कोई माल जमा करना गलत है, जमा मालम वददा, अल्लाह कह रहा है कि अगर तुम माल जमा करोगे मैं इस माल को तपा कर सुरख करके अंगारे की तरह तुम्हारी पेशानियां, तुम्हारी पसलियां और तुम्हारी पीठें दागूंगा। ये है या नहीं कुरान की आयत, तो फिर ये हमने कहां से निकाल लिया, ये कहां से बना लिया कि माल जमा करो और उस पर 2.5 रुपए दे दो के जान छुड़ा लो। एक जुमला सुन ले, बड़ा मजा आएगा आपको। शरीयत में 40 पे 1 रुपया जकात है और तरीकत में 41 रुपए जकात है, कि तुमने एक ये 40 रुपए जमा क्यों किए, तुम्हें अल्लाह पे भरोसा नहीं है। गौर करें, अब तर्ज फिक्र है ना, देखें ये सारा तर्ज फिक्र है। हजूर कलंदर बाबा औलिया ने किताब लोह कलम में वाह शगाफ लिखा है कि ये एक इंतहाई जामे प्रोग्राम है, अकीमो सलात वातो जकात, आपने इसकी रूह को समझ लिया। उन्होंने साफ लिखा है कि एक जिस्म का वजीफा है और एक जहन का वजीफा है,
ठीक है।
अब देखे ना, पीटीएम करते हैं तो पीटी करके अब फौजियों से ड्रिल कराई जाती है, ठीक है, लेकिन उन्हें तैयार तो असल में जंग के लिए किया जा रहा है ना, दुश्मन से लड़ने के लिए,
ठीक है,
हाँ या नहीं।
सही।
अब वो कहे कि जी पीटी ही मेरा मकसद है, तो जाहिर है कि वो तो एकेडमी क्वालिफाई नहीं कर सकेगा।
सही है।
देखे ना, असल युद्ध जो है वो तो आपने शैतान के खिलाफ लड़ना है, अपने नफ्स के खिलाफ लड़ना है, उधर तवज्जो नहीं है, उसको हम समझे ही नहीं, लिहाजा वो रस्म बन गई, रस्म में फिर ये होता है कि दिल नहीं लगता। जी
हाँ, तो ज़कात को फिर जरा तो और जरा तफसील से बता रहे
हैं। ज़का का लफ्ज़ जो है ना,
हम तो ये समझते
हैं ज़का का लफ्ज़, ज़का, ज़का, कद अफलहा मन तज़क्का, अल्लाह कहता है
मन तज़क्का,
वो उसे काम मिल गया, फलाह कहते हैं हल चलाने को, तज़क्का जिसने खुद को डेवलप किया, ज़का का मतलब नशो नुमा देना है, वो आत सका जो खुद भी डेवलप हो रहा है दूसरों को भी डेवलप कर रहा है। असल मफहूम क्यों नहीं ले रहे हैं? हम 2.5 रुपए दे के जान छुड़ा रहे हैं।
और कर... समझेंगे
नहीं, वो बिल्कुल जरूरी है। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि उसकी रूह को भी तो समझे ना। अब आप नमाज पढ़ने खड़े, अल्लाह का एहसास ही नहीं है, दुनिया जहाँ के ख्याल चल रहे हैं।
चल पड़े ठीक
हो गया जी,
ठीक हो गया बिल्कुल,
काफी है।
मतलब अब ये हर एक हमें हारों पे सेन नहीं रखना चाहिए, अपने रब के मुताबिक अपने सेन को चलाएं।
जी इसीलिए आपको पता है ना ये मुराकबा मर्तबा है एहसान। अब्बा क्या कहते हैं कि भई आप पहले मुसल्ले पे नमाज जब कायम करने के लिए मुसल्ले पे बैठे तो एक 5 मिनट आंखें बंद करके ये तसव्वुर जमाएं कि मैं अल्लाह के सामने हाजिर हूँ, अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है, वो अल्लाह जो मुझसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, वो अल्लाह मेरी तरफ मतवज्जो है, माँ बच्चे की तरफ मतवज्जो, बच्चा वैसे ही खिल उठता है। हम माँ जितना ताल्लुक माने तो सही अल्लाह के साथ, देखे ना, हम माँ जितना ताल्लुक मानते हैं अल्लाह के साथ, नहीं हम तो उसको हुक्म देते हैं ये कर दे और ये नहीं करना, नहीं नहीं नहीं, हमारे अंदर कोई मोहब्बत है ही नहीं अल्लाह के लिए, तो हम माने तो सही ना, जब मान लेंगे तभी वो आएगी ना, पैदा करेंगे। ये जो तसव्वुर मर्तबा एहसान का मुराकबा है ये भी हदीस से कि अल्लाह ने हजूर अलैहिस्सलाम से कहा, उन्होंने कहा कि तुम इस तरह उसकी इबादत करो कायना का तरह, गोया तुम उसको देखते हो, वरना वो तो तुम्हें देख ही रहा है, इतना तो महसूस करो कि वो तुम्हें देख रहा है। क्यों जी
ठीक हो गए, थैंक यू।
चले अपना ख्याल रखिए, मेरा ख्याल है काफी हो गया आज, या है किसी के पास कुछ पूछने को सवाल?
नहीं कार्य
जी फरमाइए।
कोई और बता रही है
कोई बात नहीं, हाँ वैसे भी टाइम बहुत कम रह गया है जी, कोई बात नहीं जी, अभी उसे अगली बार पे रखें, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में रखें,
क्योंकि वो रूए इंसानी और रूए इंसानी के ऊपर है, काफी लंबा है तो आपको टाइम लग जाएगा।
हो सकता है मैं 3 जुमलों में ही निपटा दूं, आप सवाल मुख्तसर करें।
अगर इंसान रूहे हैवानी, अगर हर इंसान को संभालने के बाद रूहे हैवानी की सतह पर होता है, मगर और इलम और आगही को तरक्की देता है, अपने तर्ज फिक्र में वसत और फैलाव पैदा कर लेता है, तो वो तरक्की कर,
मैं आपको आसान अल्फाज में अर्ज कर देता हूँ, मैं आसान अल्फाज कर देता हूँ, इन इस्तलाहात को एक तरफ रख दें और इल्म फिकर और अमल, क्या ये 3 लफ्ज याद कर लें? इल्म जो है ये रूह आजम का दर्ज है, फिकर जो है ये रूह इंसानी का दर्ज है, और अमल जो है ये रूह हैवानी का दर्ज है।
अमल रूह हैवानी, ठीक है,
बात पूरी हो गई। इल्म जो है ये रूह आजम है, अगर आपके अंदर जितना इल्म आता चला जाएगा आप रूह आजम के करीब होते जाएंगे, जितनी आपकी फिक्र दिमाग काम करेगा, जहन काम करेगा, जितना आप खोज लगाएंगे, जुस्तजू करेंगे, रिसर्च करेंगे, खुदेड़ेंगे चीजों को, उधेड़ेंगे उनको, जानने की कोशिश करेंगे, ये रूह इंसानी का दर्ज है। अब जो आपको समझ आया उसके मुताबिक आपने जो जिस तरह से हाथ हिलाए और जिस तरह से मुंह हिलाया, जिस तरह से पैर हिलाए, जिधर गए जिधर, वो सब अमल के दर्जे हैं। मुख्तसर अल्फाज में कितनी बड़ी बात कह गया। सारा आपका रूहानियत का तीनों दर्जे जो हैं तीन लफ्जों में, ये मैं नहीं, हजूर कलंदर बाब औलिया ने इरशाद फरमाए हैं और किताब लौह कलम में इरशाद फरमाए हैं। लेकिन हमने किताब भी तो नहीं पढ़ी ना, मसला तो ये, हम पढ़ते कब हैं? ये तीन लफ्ज याद रहेंगे, इल्म रूहे आजम, फिकर रूहे इंसानी, ये इनके इस्तलाही नाम है। और अमल जो है ये रूहे हैवानी है बस उसे जी। अब इंशाल्लाह आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल। देखे ना, आपने रूहे हैवानी के दर्जे से ऊपर को उठना है। पहले आप अपने जहन का इस्तेमाल करेंगे, जहन का इस्तेमाल करेंगे तो फिर इल्म हासिल होगा। वो इल्म नहीं जो किताबें पढ़ने से आता है, वो इल्म जो कि आपके अंदर से उगता है, जो अल्लाह ने आपके अंदर फूंका था, जो इल्म इल्मुल अस्मा जो आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, उस इल्म को हासिल करना रूहे आजम का काम है, उसी को रूहे आजम कहते हैं। ठीक हो गया जी,
ठीक हो गया।
अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज,
अल्लाह।